एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, सभी सुनने वालों का स्वागत है।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं और उसके कुछ ऐसे विचारों पर जिन्होंने दशकों पहले कला और संस्कृति को देखने के हमारे नजरिए पर आप कह सकते हैं सवाल उठाए थे, और वो सवाल मुझे लगता है आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सूसन सोंटैग के बहुत ही प्रभावशाली निबंध संग्रह अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन एंड अदर एसेज की, और खास तौर पर इसके सबसे चर्चित निबंध अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या के विरुद्ध की।
तो आज की ये जो हमारी चर्चा है, इसका मकसद क्या है? हम कोशिश करेंगे सोंटैग के इस कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार को समझने की कि क्या हम किसी कला या किसी भी अनुभव का मतलब निकालने की कोशिश में असल में उस अनुभव को ही मतलब खो देते।
हाँ, और ये आज इतना रेलेवेंट क्यों है? जरा सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ जानकारी ही जानकारी है। हर चीज का एनालिसिस, हर चीज पर फॉरेन एक ओपिनियन, हर चीज के पीछे छिपा हुआ अर्थ या मैसेज खोजने की एक होड़ सी लगी हुई है।
सही कहा।
तो सोंटैग हमें एक तरह से रुक कर सोचने पे मजबूर करती हैं, क्या हम चीजों को बस जैसी वो है वैसा महसूस कर सकते हैं? क्या हम बिना उसकी चीरफाड़ किए कला का, संस्कृति का या शायद जिंदगी का ही सीधा सीधा अनुभव ले सकते हैं?
ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए सबसे पहले उस शख्सियत को थोड़ा जानते हैं जिनके विचारों ने इतनी हलचल मचाई थी। सूसन सोंटैग कौन थी वो?
सूसन सोंटैग, जिनका जीवनकाल 1933 से 2004 तक रहा, वो सिर्फ एक लेखिका या आलोचक नहीं थी। वो 20वीं सदी की अमेरिका की सबसे जानी मानी, सबसे प्रभावशाली पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में से एक थी। वो निबंध लिखती थीं, उपन्यासकार थीं, फिल्म मेकर थीं, नाटककार थीं और एक एक्टिविस्ट भी थीं। उनकी आवाज में वजन था।
हाँ, और उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जगहों पर हुई, जैसे शिकागो, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि वो किसी अकादमिक दायरे में बंधी नहीं रहीं। उनका काम हमेशा से ही मतलब बौद्धिक जगत और आम पाठक के बीच एक पुल की तरह रहा।
और इस विषय पर लिखने के लिए यानी कला की व्याख्या पर सवाल उठाने के लिए वो शायद सबसे सही इंसान थी। क्यों? पहली बात तो ये कि उन्हें यूरोपियन फिलॉसफी, खासकर फ्रेंच और जर्मन विचारों की बहुत गहरी समझ थी।
अच्छा,
दूसरी बात, वो खुद एक आर्टिस्ट थीं। वो लिखती थीं, फिल्में बनाती थीं, तो वो क्रिएटिव प्रोसेस को सिर्फ बाहर से नहीं देखती थी, वो उसे अंदर से समझती थीं।
और शायद तीसरी बात ये भी कि वो 1960 के दशक में लिख रही थीं। वो एक ऐसा दौर था जब कला, संगीत, सिनेमा हर चीज में जबरदस्त प्रयोग हो रहे थे, है ना? पॉप आर्ट, न्यू वेव सिनेमा, मिनिमलिज्म।
बिल्कुल, ये सब चीजें उभर रही थीं और सोंटैग इस नई संवेदनशीलता, इस न्यू सेंसिबिलिटी की एक तरह से पैरोकार थीं। वो उसे समझ रही थीं, उसे आवाज दे रही थीं। तो उनकी जो विश्वसनीयता थी वो सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं थी, बल्कि कला के प्रति उनके अपने जुनून, उनके सीधे जुड़ाव से आती थी।
तो अब आते हैं किताब के मूल विचार पर। अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन, ये शीर्षक ही अपने आप में एक बयान है। ये किताब या ये निबंध आखिर कहना क्या चाहता है?
देखिए, मूल रूप से ये निबंध संग्रह है और खासकर इसका जो टाइटल ऐसे है वो मॉडर्न क्रिटिसिज्म के सबसे बड़े हथियार पर ही हमला है, और वो हथियार है इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करना, किसी आर्टवर्क का मतलब निकालना। सोंटैग कहती हैं कि ये तरीका न सिर्फ थकाऊ है बल्कि कला का अनादर करता है और उसके असली जादू को खत्म कर देता है।
अच्छा, मतलब वो कह रही है कि अर्थ निकालना गलत है।
उनका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि कला से छिपे हुए अर्थ या संदेश खोजने की जो हमारी धुन है, उसने कला के सीधे प्रत्यक्ष सेंसरी अनुभव को, यहाँ तक कि उसके रहस्य को भी नुकसान पहुंचाया है। हम कला को समझने की कोशिश में उसे महसूस करना भूल गए हैं।
इसको थोड़ा और खोलिए, जैसे कोई उदाहरण।
सोचिए, जैसे कोई बहुत सुंदर पेंटिंग है, अब हम उसे देखकर ये सोचने लगे कि पेंटर इसके जरिए समाज को क्या संदेश देना चाह रहा है या इसमें कौन सा मनोवैज्ञानिक सिंबल छिपा है, बजाय इसके कि हम उसके रंगों को देखें, उसकी लाइनों को महसूस करें, उसकी बनावट पर ध्यान दें। सोंटैग कहती हैं कि ये कला को एक इंटेलेक्चुअल पजल बना देना है, उसे पालतू बना देना है।
पालतू?
हाँ, और इस चक्कर में वो कहती हैं हमने अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को नज़रअंदाज करना सीख लिया है। हमने देखना, सुनना, महसूस करना कम कर दिया है। हम अनुभव के बजाय मतलब के पीछे भाग रहे हैं।
तो फिर सवाल उठता है कि अगर व्याख्या नहीं करनी, इंटरप्रिटेशन नहीं करना, तो फिर करें क्या? क्या सोंटैक कोई रास्ता सुझाती हैं?
हाँ बिल्कुल, और यही उनका सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे रेडिकल विचार आता है, वो इंटरप्रिटेशन यानी हर्म्यूटिक्स यानी व्याख्या के सिद्धांत की जगह कला का श्रृंगार या एरोटिक्स ऑफ आर्ट का प्रस्ताव रखती हैं।
कला का श्रृंगार, एरोटिक्स ऑफ आर्ट, ये सुनने में तो बहुत ही काव्यात्मक पोएटिक लग रहा है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कला के साथ एक ज्यादा सीधा, ज्यादा सेंसुअस, ज्यादा संवेदी रिश्ता बनाना, ध्यान अर्थ से हटाकर कला के रूप यानी फॉर्म पर, उसकी शैली यानी स्टाइल पर, उसकी सतह यानी सरफेस पर, उसकी बनावट, उसके टेक्सचर पर लाना।
अच्छा,
सवाल इसका मतलब क्या है से बदलकर ये पूछना कि ये कैसा है और ये मुझ पर क्या असर करता है। कला को दिमाग से ज्यादा अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से महसूस करना।
अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि फिल्म की कहानी के विश्लेषण से ज्यादा उसके कैमरा वर्क पर, उसके साउंड डिजाइन पर, एडिटिंग की लय पर ध्यान देना, या किसी गाने के बोल के मतलब से ज्यादा उसकी धुन, उसकी आवाज के टेक्सचर को महसूस करना।
बिल्कुल सही, सोंटैक हमें कला के उस सेंसरी अनुभव में, उस संवेदी दुनिया में डूब जाने को कह रही हैं, और ये सिर्फ कला के पंडितों या क्रिटिक्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हम में से बहुत से लोग अक्सर ये सोचकर कला से थोड़ा कतराते हैं कि अरे ये हमें समझ नहीं आएगी। सोंटैक कह रहे हैं कि शायद समझना ही गलत लक्ष्य है।
ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उसी टाइटल एसे से, अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन। इसमें वो अपने तर्क को कैसे बिल्ड करती हैं?
वो इंटरप्रिटेशन के इतिहास से शुरू करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे पुराने जमाने में, एंशिएंट ग्रीस में, प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने कला को, खासकर होमर की कविताओं को, नैतिक रूप से थोड़ा संदिग्ध माना था। फिर बाद के विचारकों ने उसे बचाने के लिए रूपक यानी एलेगोरी का सहारा लिया।
अच्छा, मतलब ये कहा कि इसका लिटरल मीनिंग मत लो, इसमें तो कोई गहरा नैतिक संदेश छिपा है।
हाँ बिल्कुल, ये इंटरप्रिटेशन का शुरुआती रूप था, कला को किसी तरह रैशनलाइज करने की, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश।
और फिर मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, जैसे फ्रॉइडियन या मार्क्सिस्ट नजरिए से कला को देखना।
हाँ, सोंटैक कहती है कि मॉडर्न इंटरप्रिटेशन तो और भी आगे बढ़ जाता है, ये कला को किसी और चीज में ही बदल देता है। जैसे फ्रॉइडियन व्याख्या के लिए हर कहानी या नाटक किसी दबी हुई इच्छा या साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और मार्क्सवादी व्याख्या के लिए वो क्लास स्ट्रगल या सोशल रियलिटी का चित्रण मात्र रह जाती है। कला अपने आप में कला न रहकर किसी थियरी का, किसी सिद्धांत का एक उदाहरण बन जाती है।
और यहीं पर वो अपनी बहुत मशहूर लाइन कहती है ना कि व्याख्या कला पर बुद्धि का बदला है।
एग्जैक्टली,
जैसे हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट कला की उस रहस्यमयी, उस इल्यूसिव ताकत से घबराकर उसे अपने कंट्रोल में करना चाहता है, उसे समझा बुझाकर उसका मतलब निकालकर उसे वश में करना चाहता है।
वाह!
और वो कहती हैं कि ये बदला कला के अनुभव को सोख लेता है, उसे पतला कर देता है, उसे कमजोर कर देता है। इसीलिए वो निबंध के अंत में फिर से उसी इरोटिक्स ऑफ आर्ट का आह्वान करती हैं, एक ऐसा नजरिया जो कला की सतह पर टिके, उसकी चमक, उसकी बनावट, उसके सेंसरी इफेक्ट को सराहे, ना कि उसके पीछे खुदाई करके कोई छिपा हुआ अर्थ निकालने की कोशिश करे। इसी तर्क को अगर आगे बढ़ाएं तो उनका एक और बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, ऑन स्टाइल यानी शैली पर। तो अगर हम व्याख्या के खिलाफ हैं तो ध्यान किस पर दें? इसका जवाब शायद यहां मिलता है।
एकदम सही का, ये निबंध अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन का एक लॉजिकल अगला कदम है। सोंटैक उस पुरानी सोच को सीधे सीधे चुनौती देती हैं जो मानती है कि कला में कंटेंट यानी विषय वस्तु ही असली चीज है, और स्टाइल यानी शैली तो बस ऊपर की सजावट है, जैसे केक पर आइसिंग होती है।
हाँ, हम अक्सर ऐसा सोचते भी हैं और कहते भी हैं, है ना, जैसे कहानी तो अच्छी थी पर फिल्म थोड़ी स्लो थी, या बात तो पते की कही है पर लिखने का ढंग जरा बोरिंग है, जैसे हम कॉन्टेंट और स्टाइल को अलग अलग चीजें मान रहे हों।
सोंटैक कहती हैं कि ये विभाजन ही झूठा है, बल्कि वो कहती हैं शैली सजावट नहीं है, ये काम की भावनात्मक और कामुक उपस्थिति का रहस्य है। उनका तर्क है कि फॉर्म और कंटेंट अविभाज्य है, इनसेपरेबल है, शैली ही तो कला का मर्म है, उसका एसेंस है।
अच्छा,
किसी फिल्म की शैली सिर्फ उसकी दिखावट नहीं होती, उसके कैमरा एंगल, एडिटिंग की स्पीड, संगीत का इस्तेमाल, ये सब मिलकर ही तो उसका पूरा असर पैदा करते हैं, है ना? उपन्यास की शैली उसके वाक्यों की बनावट में है, शब्दों के चुनाव में है, कहानी कहने के तरीके में है।
तो उनका कहना है कि कंटेंट से ज्यादा स्टाइल पर ध्यान देना कला के साथ ज्यादा न्याय करता है।
एक तरह से हाँ, क्योंकि शैली ही कलाकार की दृष्टि का, उसके चुनावों का, उसकी संवेदनशीलता का सबसे सीधा सबूत है। स्टाइल पर ध्यान देना मतलब आर्टवर्क को उसकी अपनी शर्तों पर समझना, न कि उसे किसी बाहरी थ्योरी के फ्रेमवर्क में फिट करना। ये ज्यादा सम्मानजनक तरीका है, ज्यादा रिवीलिंग है।
अच्छा, तो व्याख्या के बजाय सेंसरी अनुभव पर जोर और कंटेंट के बजाय फॉर्मर स्टाइल पर। इन विचारों का एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा चर्चित उदाहरण उनके एक और निबंध नोट्स ऑन कैंप में मिलता है ना?
1964 में ही बौद्धिक चर्चा के सेंटर में ला दिया था। उन्होंने कैंप को एक खास तरह की एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, एक सौंदर्य बोध के रूप में परिभाषित किया।
ये कैसी सेंसिबिलिटी है, थोड़ा और समझाएंगी?
कैंप वो नजरिया है जो बनावटीपन, अतिशयोक्ति, नाटकीयता और स्टाइल को, मतलब स्टाइल फॉर स्टाइल सेक, बहुत ज्यादा महत्व देता है, अक्सर गंभीरता की कीमत पर। कैंप गहरे अर्थ की परवाह नहीं करता, वो सतह का, चमक दमक का, चीजों के होने के ढंग का जश्न मनाता है। इसमें थोड़ा मजाक भी होता है, थोड़ी विडंबना भी।
और उनकी वो कमाल की लाइन है, परम कैंप कथन, ये अच्छा है क्योंकि ये घटिया है।
The ultimate camp statement, it's good because it's awful.
मतलब कोई चीज इतनी बुरी तरह से भव्य या गंभीर होने की कोशिश करे कि वो अपने आप में मजेदार या शानदार बन जाए।
बिल्कुल, जैसे पुराने जमाने की बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक फिल्में, या जरूरत से ज्यादा सजे धजे भड़कीले कपड़े, या वो पुराने टिफनी लैम्प्स। सॉन्टैग कहती हैं कि कैंप गंभीरता में असफल होने का सौंदर्य है। ये निबंध दिखाता है कि कैसे उनका वो नॉन इंटरप्रेटिव अप्रोच उन चीजों में भी सौंदर्य या दिलचस्पी खोज सकता है जिन्हें पारंपरिक गंभीर आलोचना शायद नजरअंदाज कर दे या खारिज कर दे। ये सतह और शैली की जीत है, और ये हाई कल्चर बनाम लो कल्चर के भेद को भी कहीं ना कहीं धुंधला करता है।
तो इन सभी दिलचस्प विचारों से उभरने वाले मुख्य संदेश या थीम्स क्या हैं, अगर हमें कुछ 3-4 मुख्य बातें निकालनी हो इस पूरी चर्चा से?
पहली और सबसे अहम थीम तो है व्याख्या का अत्याचार, द टिरनी ऑफ इंटरप्रिटेशन। सॉन्टैग हमें ये दिखाती हैं कि कैसे अर्थ खोजने की हमारी जिद, हमारी मजबूरी, कला को सीमित कर देती है, उसे पालतू बना देती है और उसके सीधे ताजे अनुभव को नष्ट कर सकती है।
दूसरी कह सकते हैं रूप और शैली की प्रधानता, द प्राइमेसी ऑफ फॉर्म एंड स्टाइल। कला का जादू उसके संदेश में उतना नहीं छिपा है जितना उसके रूप में, उसकी बनावट में, उसकी शैली में। और ये कि रूप और कंटेंट अलग नहीं है बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या शायद एक ही चीज है।
तीसरी, कला का श्रृंगार, द रोटिक्स ऑफ आर्ट। ये उनका पॉजिटिव प्रपोजल है। कला के साथ एक ज्यादा सीधा, ज्यादा इंद्रिया आधारित, ज्यादा पैशनेट और आनंददायक रिश्ता बनाने का आवाहन, अपनी इंद्रियों को जगाने और उन पर भरोसा करने की जरूरत।
और चौथी, शायद कला एक अनुभव के रूप में, आर्ट एज एक्सपीरियंस। मतलब कला सिर्फ दुनिया के बारे में कोई बयान या संदेश नहीं है, ये अपने आप में एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हमारी चेतना को, हमारे महसूस करने की क्षमता को बढ़ा सकता है, हमें नए तरीके सिखा सकता है।
इन विचारों को अगर हम अपने आसपास देखें, खासकर भारत में, हम फिल्मों या किताबों पर कैसे बात करते हैं, क्या ये बातें लागू होती हैं?
हाँ, मुझे लगता है काफी हद तक होती हैं। हम अक्सर कहानी, नैतिकता या इस फिल्म से क्या सीखने को मिला, इसी पर अटक जाते हैं। ये सवाल बहुत आम है हमारे यहाँ। सॉन्टैग शायद हमें पूछने को कहती, फिल्म कैसी दिखती है, कैसी लगती है, उसके रंग, उसका संगीत, उसकी रफ्तार, उन्होंने आप पर क्या असर डाला?
बिल्कुल, और आजकल सोशल मीडिया को देखिए, हर घटना, हर तस्वीर, हर बयान का तुरंत मतलब निकाला जाता है, उसका विश्लेषण होता है, उसे किसी न किसी खांचे में फिट कर दिया जाता है। क्या हम कभी किसी चीज को बस देख या सुन सकते हैं बिना उस पर तुरंत कोई लेबल चिपकाए, बिना उसका मतलब निकालें?
सही कहा, शायद सॉन्टैग की बातें हमें थोड़ा धीमा होने को कहती हैं, थोड़ा ज्यादा ध्यान से और अपनी इंद्रियों पर ज्यादा भरोसा करके दुनिया को अनुभव करने की चुनौती देती हैं।
और इस किताब में वाकई कई ऐसी पंक्तियां हैं जो रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ और यादगार विचार साझा करें?
हाँ, एक तो वही जो हमने कई बार दोहराई, हमें व्याख्या शास्त्र की जगह कला के श्रृंगारे, एरोटिक्स ऑफ आर्ट की आवश्यकता है। ये तो जैसे पूरे तर्क का दिल है, विश्लेषण की जगह अनुभव।
दूसरी वो तीखी वाली टिप्पणी, व्याख्या कला पर बुद्धि का बदला है। ये बार बार याद दिलाती है कि कैसे हमारी समझने की जिद कला की उस रहस्यमयी ताकत को कम कर सकती है, उसे वश में करने की कोशिश करती है।
और आलोचना का मकसद क्या होना चाहिए, इस पर उनकी बात बहुत साफ है। आलोचना का कार्य यह दिखाना होना चाहिए कि कैसे वो वह है जो वह है, ना कि यह दिखाना कि उसका क्या मतलब है। यानी कलाकृति जैसी है उसे वैसा समझने पर जोर, ना कि उसके पीछे छिपे मतलब पर। वो कैसे बनी है, वो कैसे असर करती है।
और एक बहुत ही सीधा, सरल लेकिन गहरा आह्वान, अब महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी इंद्रियों को पुनः प्राप्त करें। हमें अधिक देखना, अधिक सुनना, अधिक महसूस करना सीखना चाहिए। आज की इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में ये शायद सबसे ज़रूरी संदेशों में से एक लगता है।
तो इन सब दिलचस्प और कहीं कहीं चौंकाने वाले विचारों का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है, हम इन्हें कैसे लागू कर सकते हैं, आप क्या सोचती हैं?
सबसे पहला और सीधा तरीका तो यही है कि हम कला का अनुभव करने का अपना नज़रिया बदलें। अगली बार जब आप किसी आर्ट गैलरी जाएं या कोई फिल्म देखें या संगीत सुनें, तो पहला सवाल इसका मतलब क्या है पूछने के बजाय थोड़ा रुकें, बस देखें, सुनें, महसूस करें।
उसके रंगों पर, रेखाओं पर, ध्वनियों पर, लय पर, बनावट पर ध्यान दें। खुद से पूछें, ये मुझ पर क्या असर डाल रहा है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, बजाय इसके कि डायरेक्टर क्या कहना चाह रहा है या सिंगर का मैसेज क्या है।
दूसरा फायदा ये हो सकता है कि ये हमें मॉडर्न आर्ट या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के सामने, जो अक्सर एक झिझक होती है या समझ ना आने का जो दबाव होता है, उससे थोड़ी मुक्ति दिला सकता है। सोनटैग के नज़रिए से देखें तो अगर आपको कोई आर्ट वर्क कन्फ्यूज़ करता है या बेचैन करता है या सिर्फ आनंद देता है, तो वही उसका अनुभव है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का एक साफ सुथरा शब्दों में बयान किया जा सकने वाला मतलब हो ही।
और वो कैंप वाली बात, वो आजकल कैसे काम आ सकती है?
कैंप की समझ हमें आज के पॉप कल्चर को, जैसे फैशन शोज, म्यूजिक वीडियोस, रियलिटी टीवी, यहाँ तक कि इंटरनेट मीम्स में जो स्टाइल है, जो अतिशयोक्ति है, जो विडंबना है, उसे पहचानने और उसका मज़ा लेने में मदद कर सकती है। हम चीज़ों की सतह पर जो खेल चल रहा होता है, जो स्टाइल का प्रदर्शन होता है, उसे ज़्यादा सराह सकते हैं।
और ये सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था।
बिल्कुल नहीं, ये हमें किसी भी जानकारी को, किसी भी तर्क को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। हम सिर्फ ये ना देखें कि क्या कहा जा रहा है यानी कंटेंट, बल्कि ये भी देखें कि कैसे कहा जा रहा है यानी फॉर्म।
अच्छा।
भाषा का चुनाव कैसा है, तस्वीरों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, किसी खबर को किस तरह से पेश किया जा रहा है, ये सब हमारे विचारों और भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग का, आलोचनात्मक सोच का एक बहुत अहम हिस्सा है।
तो अंत में इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है, आपके लिए सबसे चौंकाने वाली या सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात ये एहसास है कि समझना हमेशा आखिरी मंजिल नहीं होनी चाहिए। कभी कभी बस महसूस करना, अपनी इंद्रियों पर भरोसा करना ज्यादा सच्चा और ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सोनटैग हमें कला के सामने और शायद जिंदगी के सामने भी ज्यादा खुले दिल और खुली इंद्रियों के साथ खड़े होने का साहस देती हैं। ये एक तरह की आज़ादी है, प्रेशर से मुक्ति।
और मेरे लिए ये विचार की व्याख्या या मतलब निकालना कला के अनुभव को कमज़ोर कर सकता है, ये बहुत शक्तिशाली लगा। हम अक्सर सोचते हैं कि विश्लेषण से हम चीज़ों के ज़्यादा करीब जाते हैं, पर सोनटैग कहती हैं कि शायद हम दूर जा रहे होते हैं। वो कैसे पर ध्यान देना क्या से ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, ये हमें कला के साथ एक ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा सीधा रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करता है।
बिल्कुल, ये हमें कला के सामने ज़्यादा विनम्र और ज़्यादा जिज्ञासु बनने का एक तरह से न्योता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।